प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी दुराशा। दार्जिलिंग पहुंचकर देखा, बादल और बारिश से दसों दिशाएं आच्छादित हैं। घर से बाहर निकलने का मन नहीं होता, घर के भीतर रहने से मन ज्यादा व्यथित होता है। दार्जिलिंग का मौसम ठीक नहीं था, दसों दिशाएं मतवाले बादलों और बारिश से ढकी हुई थीं। ऐसे मौसम में न बाहर जाने का मन होता और न ही घर के अंदर बैठे रहने का। मन में उदासीनता थी। होटल में प्रातःकाल का नाश्ता करके लगदग यानी कि बंजर या वीरान होकर घूमने निकल पड़ा। लगातार वर्षा हो रही थी और चारों तरफ घने मेघ मंडरा रहे थे। वीरान कैलकटा रोड की सड़कों पर अकेले चहलकदमी करते हुए मैं सोच रहा था, असंख्य मेघों के इस देश में अब ठीक नहीं लगता। शब्द स्पर्श और खुशबू से भरे अनोखी धरती माता को फिर से पांचों इंद्रियों द्वारा पांचों रूपों में पाने के लिए दिल व्याकुल हो उठा है। तभी समीप ही किसी महिला के रोने की करुण वेदना मुझे सुनाई दी। वैसे तो संसार ही रोता बिलखता रहता है, इसलिए किसी का आंसू बहाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी अन्य स्थान पर होता तो शायद मुड़कर भी नहीं देखता, परंतु इस प्रकार के मौसम में ये आवाज कुछ अजीब और अकेली सी अनुभव हुई। मैं इस आवाज की अनदेखी नहीं कर सका। आवाज की तरफ आगे बढ़कर देखा, गेरुआ कपड़े पहने एक महिला जिसके सिर की सुनहरी और मटमैली जटाएं जूड़े के रूप में बंधी हुई थीं, सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठी बिलख रही थी। मानो अभी अभी घटी किसी शोकपूर्ण घटना पर विलाप जैसा रोना नहीं था, ये तो दुखों का ऐसा ज्वालामुखी था जो अंदर के अंधेरे और एकाकीपन के एहसास से पिघल कर बाहर आ रहा था। मैंने टूटी फूटी हिंदी में उससे पूछा, तुम कौन हो, क्या हुआ है तुम्हें, विलाप क्यों कर रही हो? बिना कोई जवाब दिए उसने अपने भीगे चमकते नेत्रों से एक नज़र मुझे देखा, ये सोचकर कि शायद किसी पर पुरुष को अचानक समक्ष पाकर वो डर जाएगी। मैंने ढांढस बंधाते हुए कहा, भयभीत मत हो, मैं भला व्यक्ति हूँ। सुनकर वो हंसती हुई शुद्ध हिंदुस्तानी में बोली, बहुत दिनों से डर भय लज्जा सब घोल कर पिए बैठी हूँ बाबूजी। मैं जिस जनान खाने में रहती थी वहाँ मेरे अपने भाई को भी भीतर आने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती थी। आज सारी दुनिया में किसी से मेरा कोई पर्दा नहीं है। पहले तो मुझे क्रोध आया, मेरा चाल चलन विलायती था, परंतु ये दुर्भाग्य की मारी निसंकोच मुझे बाबूजी कहकर क्यों बुला रही है। सोचा बेकार की मगजपच्ची क्यों करूं, अपना रास्ता पकड़ूं। परंतु उसके उत्तर के पश्चात उत्पन्न हुए कौतूहल वश ऐसा न कर पाया, बल्कि कुछ बड़प्पन दिखाते हुए गर्दन टेढ़ी करके पूछा, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या, क्या तुम्हारी कोई प्रार्थना है? उसने दृढ़ भाव से मेरे चेहरे की तरफ देखा और पल भर पश्चात संक्षेप में जवाब दिया, मैं बद्राउन के नवाब गुलाब कादिर खां की पुत्री हूँ। बद्राउन किस देश में है? गुलाब कादिर खां कौन से नवाब है? उनकी पुत्री किस पीड़ा के कारण सन्यासिनी का वेश धरकर दार्जिलिंग के इस कैलकटा रोड के किनारे बैठकर विलाप कर रही है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु उसका परिचय पाकर जानने की इच्छा और अधिक बढ़ गई। बीच में रोकूंगा नहीं, कहानी खूब जम रही है। उसी क्षण अपने चेहरे को और अधिक गंभीर बनाकर लंबा सलाम करते हुए बोला, बीबी साहिबा क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना पाया। न पहचानने के कई तर्कपूर्ण कारण उत्पन्न किए जा सकते थे, उनमें सबसे बड़ा कारण था कि उन्हें पहले कभी देखा नहीं था। उस पर ऐसा घना कोहरा कि अपने हाथ पैर देखना तक कठिन हो रहा था। बीबी साहिबा ने भी इसमें मेरा कोई दोष नहीं माना और संतुष्ट स्वर में दाएं हाथ के इशारे से एक अलग पत्थर की तरफ इशारा करते हुए मुझे आज्ञा दी, बैठिए। मैंने देखा उस महिला में अधिकार पूर्ण आदेश देने की क्षमता थी। मैंने ऐसा दर्शाया मानो बैठने की उसकी सहमति पाकर एक दुर्लभ सम्मान हासिल किया हो। बद्राउन के गुलाम कादिर खां की बेटी नूरुन्निसा या मेहरुन्निसा का नूरुल मुल्क ने मुझे दार्जिलिंग के कैलकटा रोड के किनारे अपने ही समीप नीचे कीचड़ लगे आसन पर बैठने का अधिकार दिया। होटल से मैकिंटोश पहनकर बाहर निकलते वक्त ऐसी महान संभावना की कल्पना मेरे सपने में भी नहीं आई थी। मैं तो मौसम में होने वाले बदलाव को देखकर ही होटल से मैकिंटोश और लॉन्ग जूते पहनकर बाहर निकला था। मैंने कहा, बीवी साहिबा, आपकी ये स्थिति किसने की? बद्राउन कुमारी ने अपने माथे पर हाथ मारा और बोली, मुझे क्या पता कौन है जो ये सब कराता है। इतने विशाल पत्थरों से भरे हिमालय को किसने सामान्य पानी भरे मेघों से आच्छादित किया है? मैंने किसी तरह का दार्शनिक तर्क उठाए बिना ही सभी बातें मान ली और बोला, आपने सही कहा, किस्मत का लेखा जोखा कौन जान सकता है, हम तो कीट मात्र हैं। तर्क उठाता परंतु मेरी भाषा में इतनी ताकत नहीं थी। दरबान और चपरासियों से जितनी हिंदी सीख पाया था उससे कैलकटा रोड के किनारे बैठकर किसी नवाब की बेटी के साथ बहस करना मेरे लिए मुश्किल था। बीवी साहिबा ने दोबारा कहा, मेरे जीवन की अनोखी कहानी आज ही पूरी हुई है, यदि आप चाहें तो सुनाऊं। मैंने उत्सुकता पूर्वक कहा, अवश्य अवश्य, यदि एहसान करें तो सुनकर कान धन्य हो जाएंगे। कोई ये ना समझे कि मैंने ठीक यही बातें इसी प्रकार से हिंदुस्तानी बोली में कही थी। मेरा कहने का मन था परंतु सामर्थ्य नहीं जुटा पाया था। भाषा की वैसी सहज शिष्टता मैंने कभी नहीं जानी थी। बीबी साहिबा के साथ बातचीत करते वक्त आज पहली बार मैं दुखी और अनपढ़ सा अनुभव कर रहा था। वे बोली, मेरे पिता के वंश में दिल्ली के सम्राट वंश का रक्त बह रहा था। उस कुल के गौरव की रक्षा करते रहने के कारण मेरे लिए योग्य वर मिलना मुश्किल हो गया था। लखनऊ के नवाब के साथ मेरे विवाह की बात चल रही थी, पिता संकोच कर रहे थे। तभी दांत से कारतूस काटने की बात पर सिपाहियों के साथ सरकार बहादुर की अनबन हो गई। तोपों के धुएं से हिंदुस्तान में अंधकार छा गया। हमारा किला यमुना के किनारे था। हमारी फौज के सेनापति एक हिंदू ब्राह्मण थे जिनका नाम केशरलाल था। केशरलाल का परिचय देते वक्त एक क्षण के लिए उसकी बोली में संगीत सा पैदा हो गया। उसकी याद ने मनों से आनंद मग्न कर दिया। मैंने अपनी छड़ी धरती पर टिका दी और सिगरेट सुलगाई। नवाब की बेटी बताती जा रही थी, केशरलाल परम हिंदू थे। मैं रोजाना प्रातःकाल उठकर अंतःपुर के झरोखे से देखा करती केशरलाल यमुना के पानी में परिक्रमा करते करते दोनों हाथ जोड़कर नवोदित सूर्य को अर्घ्य देते थे, फिर घाट पर बैठकर जप करते और साफ सुंदर गले से भैरव राग में भजन गाते हुए घर वापस आ जाते। मैं मुस्लिम बालिका थी परंतु कभी अपने धर्म की बात नहीं सुनी थी और अपने धर्म के लिए निर्धारित पूजा अर्चना की विधि भी नहीं जानती थी। उन दिनों भोग विलास, शराब पीना, निरंकुशता से हमारे पुरुषों में दया धर्म लुप्त हो गया था और अंतःपुर के प्रमोद भवन में भी धर्म जागृत नहीं था। ईश्वर ने शायद मेरे मन में स्वाभाविक धर्म पिपासा दी थी या और कोई गहरा रहस्य था या नहीं बता नहीं सकती, किंतु रोजाना शांत प्रभात के नवोदित सूर्य की नई किरणों में केशर लाल की पूजा अर्चना के दृश्य से मेरा उसी वक्त नींद से जागा अंतःकरण एक अव्यक्त भक्ति माधुर्य से परिपूर्ण हो जाता। मेरे हृदय में केशरलाल के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। मेरी एक हिंदू नौकरानी थी, वो रोजाना झुक कर नमस्कार करके केशरलाल के पांवों की धूल ले आती थी। ये देखकर मुझे आनंद की अनुभूति के साथ साथ जलन भी होती थी। क्रियाकर्म, त्योहार आदि के मौके पर वो दासी कभी कभी ब्राह्मण भोज करवा कर दक्षिणा देती थी। अपनी तरफ से मैं उसकी मदद के लिए धन देती और पूछती, क्या केशरलाल को आमंत्रित नहीं करोगी? वो जीभ काट कर कहती, केशरलाल किसी का अन्य दान ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से केशरलाल को किसी भी प्रकार का भक्ति चिन्ह न दिखा सकने के कारण मेरा हृदय द्रवित और अतृप्त बना रहता। हमारे पूर्वजों में से कोई एक ब्राह्मण कन्या को बलपूर्वक शादी करके ले आए थे। मैं अंतःपुर के किनारे बैठकर उनके पवित्र खून का प्रवाह अपनी शिराओं में महसूस करती और उस रक्त सूत्र से केशरलाल के साथ अभिन्न संबंध की कल्पना करके थोड़ी मात्रा में तृप्त होती थी। अपनी हिंदू दासी से मैं हिंदू धर्म के सभी आचार व्यवहार सीखती, देवी देवताओं को हैरान करने वाली कथाएं सुनती, रामायण महाभारत का पूर्व इतिहास आदि सब कुछ विस्तार से सुनती। सुनकर उस बंद अंतःपुर के एक ओर बैठकर हिंदू जगत का अनुपम दृश्य मेरे मन के द्वार पर जाग उठता। मूर्ति और प्रतिमाएं, शंख घंटे की आवाज, सोने के कलश वाले सुंदर मंदिर, धूप और धुने का धुआं, अगरबत्ती और चंदन मिले फूलों की खुशबू, योगी तथा सन्यासियों की अलौकिक क्षमता, ब्राह्मण को देवता समान महत्व देना, मनुष्य रूप धारण किए देवताओं की विचित्र लीला, ये सब मिलकर मेरे लिए एक बहुत पुराने विशाल सुंदर और अलौकिक माया लोक की सृष्टि करते। मेरा हृदय डाल से अलग हुए छोटे पक्षी की भांति प्रातःकाल विशाल पुराने महल के प्रत्येक कक्ष में उड़ उड़ कर घूमता रहता। हिंदू जगत मेरे बालिका हृदय के लिए एक अति सुंदर परियों की कहानियों वाला साम्राज्य था। उन्हीं दिनों कंपनी बहादुर के साथ सिपाहियों की लड़ाई छिड़ गई। हमारे बदराउन के छोटे से किले में भी क्रांति की लहर जाग उठी। केशरलाल बोले, अब तो गोमांस खाने वाले गोरे लोगों को आर्यावत से भागकर फिर एक बार हिंदुस्तान में राजपद के लिए हिंदू मुसलमानों में जुए की बाजी जमानी पड़ेगी। मेरे पिता गुलाम कादिर खां चालाक व्यक्ति थे। वे अंग्रेज लोगों को कूट संभाषण से संबोधित कर बोले, वे लोग असंभव को संभव कर सकते हैं, हिंदुस्तान के लोग किसी भी प्रकार से उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं अनिश्चय की उम्मीद में इस छोटे से किले को गंवाना नहीं चाहता। मैं कंपनी बहादुर से लड़ाई नहीं करूंगा। हिंदुस्तान के सभी हिंदू मुस्लिमों का रक्त उबल रहा था और मेरे पिता की इस व्यापारी सुलभ चालाकी से हम सबके मन में धिक्कार का भाव जाग उठा। यहाँ तक कि मेरी बेगम माताएं भी दुखी हो उठी थीं। इसी वक्त फौज लिए सशस्त्र केशरलाल ने आकर मेरे पिता से कहा, नवाब साहब, यदि आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो जब तक लड़ाई चलेगी आपको बंदी बनाकर आपके किले में मैं अधिकार जमा लूंगा। मेरे पिता ने तुरंत बात बदल कर कहा, इस प्रकार के लड़ाई झगड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। केशरलाल बोले, राजकोष से कुछ धनराशि निकालनी पड़ेगी। पिता ने ज्यादा कुछ नहीं दिया, बोले, जब जैसी आवश्यकता होगी देता रहूंगा। मेरी मांग से लेकर पांव की उंगली तक के जितने गहने थे सब एक वस्त्र में बांधकर अपनी हिंदू दासी के हाथों मैंने केशरलाल के पास भेज दिए। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे शरीर का हर अंग हर्ष से गदगद और रोमांचित हो उठा। केशरलाल जंग लगी बंदूक के नालों और पुरानी तलवारों को घिस घिस कर साफ करने में लग गए। इतने में अचानक एक दिन संध्या के समय जिला कमिश्नर साहब गोरी फौज को साथ लेकर आकाश में धूल उड़ाते हुए हमारे किले में आ धमके। मेरे पिता गुलाम कादिर खां ने उन्हें छिपकर लड़ाई की सूचना पहुंचा दी थी, परंतु बदराउन की फौज पर केशरलाल का ऐसा दबदबा था कि उनके एक इशारे पर वे टूटी बंदूक और जंग लगी तलवार हाथ में लिए प्राण न्यौछावर करने को तत्पर हो गए। विश्वासघाती पिता का घर मुझे नरक की भांति लगने लगा। गुस्से से पीड़ा, लज्जा और नफरत से छाती फटने लगी, परंतु नेत्रों से एक बूंद अश्रु नहीं निकले। अपने डरपोक भाई के वस्त्र पहनकर बदली हुई वेशभूषा में मैं किले से बाहर निकल गई। किसी के पास मुझे देखने का मौका न था। जब धूल और बारूद का धुआं, सैनिकों की आहें और बंदूकों की ध्वनि थम गई तो ऐसा लगा मानो मौत की भीषण शांति ने जल स्थल और आसमान को आच्छादित कर दिया हो। यमुना के पानी में अपनी लालिमा बिखेर कर सूर्य छिप गया था। शाम के आसमान में शुक्ल पक्ष का पूर्ण चंद्रमा उपस्थित था। लड़ाई के मैदान में चारों तरफ केवल मौत का तांडव हो रहा था। कोई और समय होता तो मेरा हृदय वेदना और डर से दब जाता, लेकिन उस दिन मैं स्वप्न में खोई हुई सी चारों तरफ घूम रही थी, तलाश रही थी कहाँ है केशरलाल। ढूंढते ढूंढते रात्रि के दूसरे प्रहर में चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी में मैंने देखा युद्ध स्थल से कुछ दूरी पर यमुना तट के आम के पेड़ों की छाया में केशरलाल और उनके स्वामी भक्त सेवक देवकी नंदन के मृत शरीर जमीन पर पड़े हैं। मैं समझ गई कि अधिक घायल अवस्था में सेवक स्वामी को या स्वामी सेवक को लड़ाई के मैदान से इस निर्विघ्न स्थान पर ठोकर लेकर आए हैं और फिर शांति से मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पहले तो मैंने बहुत दिनों की अतृप्त इच्छा की पूर्ति की। मैंने केशरलाल के पांवों में बैठकर अपने घुटने तक लंबे केशों को खोलकर बार बार उनके पांवों की धूल पोंछी, फिर उनके बर्फ की तरह ठंडे पांवों को उठाकर अपने माथे पर लगाया। पांवों का चुंबन करते ही मेरे अश्रु बह निकले। तभी केशरलाल का शरीर कांपने लगा और अचानक उनके मुंह से दुख का अस्फुट स्वर सुनकर मैंने घबराकर उनके पैर छोड़ दिए। मैंने सुना, नेत्र बंद किए सूखे गले से उन्होंने एक बार कहा, पानी। मैं उसी पल दौड़कर अपनी ओढ़नी को यमुना के पानी में भिगो कर लाई। ओढ़नी को निचोड़कर केशरलाल के खुले ओठों में पानी डालने लगी और उनके मस्तिष्क पर जो गहरा घाव लगा था उस पर अपने गीले वस्त्र का किनारा फाड़कर बांध दिया। इस तरह कई बार यमुना से पानी लाकर उनके मुंह और नेत्रों को भिगोने के बाद धीरे धीरे उनकी बेहोशी टूटने लगी। मैंने पूछा, और पानी चाहिए? केशरलाल ने पूछा, कौन हो तुम? मैं अब अपने को रोक ना पाई, बोली, अधीना, आपकी सेविका। मैं नवाब गुलाम कादिर खां की पुत्री हूँ। मैंने सोचा था केशरलाल मृत्युशैया के वक्त अपने भक्त का आखिरी परिचय साथ लेते जाएंगे, इस सुख को कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा। परंतु मेरा परिचय पाते ही केशरलाल शेर के समान जोर से बोले, बेईमान की पुत्री विधर्मी, मृत्यु के समय यमन यानी मुसलमान के हाथ का पानी पिलाकर तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये कहकर उन्होंने आवेग से मेरे गाल पर दाएं हाथ से थप्पड़ मारा। मैं मूर्छित सी हो गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस समय मैं 16 साल की थी। अंतापुर से बाहर ये मेरा पहला दिन था। अभी तक सूर्य के तेज की किरणों ने मेरे कोमल कपोलों की लालिमा को चुराया भी नहीं था, पर उस बाहरी संसार में पैर रखते ही अपने देवता से मुझे ये प्रथम इनाम मिला था। मैं बुझे हुए सिगरेट को हाथ में लेकर चित्रवत बैठा था। कहानी या भाषा या संगीत सुन रहा था पता नहीं। मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। अब मुझसे और न रहा गया। अचानक बोला, जानवर। नवाब की बेटी ने कहा, जानवर नहीं, क्या जानवर मृत्यु के वक्त होठों पर आई पानी की बूंदों को ग्रहण नहीं करता है? मैंने उदास होकर कहा, अच्छी बात है, वो देवता था। नवाब की बेटी बोली, कैसा देवता? क्या देवता भक्त की सेवा का ऐसा अपमान करता है? मैंने कहा, यह अच्छी बात नहीं है। ये कहकर मैं चुप हो गया। नवाब की बेटी ने कहा, आरंभ में तो मुझे गहरा घाव लगा। ऐसा लगा मानो पूरा आकाश एकाएक टूट कर मेरे सिर पर आ गिरा हो। पल भर में होश में आकर उस जड़ किंतु पवित्र वीर ब्राह्मण के पैरों में दूर से ही नमस्कार किया और मन ही मन बोली, हे ब्राह्मण, तुम तीन दुखियों की सेवा, दूसरों का अन्न, अमीर का दान, युवती का यौवन, नारी का प्रेम कुछ भी प्राप्त नहीं करते। तुम आज़ाद, अकेले और निर्लिप्त हो, दूर हो। मुझे तुम्हारे समीप आत्मसमर्पण करने का अधिकार तक नहीं है। नवाब की बेटी को जमीन पर माथा टेक कर नमस्कार करते देखकर केशरलाल को कैसा अनुभव हुआ नहीं पता, किंतु उनके चेहरे पर हैरानी या अन्य कोई भाव नजर नहीं आए। शांत भाव से उन्होंने एक बार मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उठे। मैं हैरान हुई और मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने बिना कुछ बोले उसे थामने से इनकार कर दिया और बहुत पीड़ा सहते हुए यमुना के घाट पर पहुंचे। वहां एक छोटी सी नाव बंधी थी, परंतु नाव चलाने वाला कोई भी नहीं था। उस नाव में बैठकर केशरलाल ने रस्सी खोली और देखते ही देखते नाव मंझधार में जाकर खो गई। मेरी इच्छा हुई कि इस बेकार जीवन को यमुना के पानी में डुबो दूं, परंतु ऐसा कर न सकी। बिना किसी उद्देश्य के यमुना के किनारे किनारे चल पड़ी। कहाँ जाऊंगी कुछ मालूम नहीं था। इतना कहकर वो मौन हो गई। मैंने भी कोई बात नहीं की। थोड़ी देर के पश्चात नवाब की बेटी बोली, इसके पश्चात की घटनाएं बड़ी कठिन है। जीवन के इन कुछ दिनों में इतना तो जान गई हूं कि असाध्य असंभव कुछ नहीं होता। नवाब के अंतापुर की बालिका के लिए बाहरी संसार संपूर्ण रूप से मुश्किल अनुभव हो सकता है, परंतु एक बार बाहर निकलने पर चलने के लिए मार्ग अपने आप मिल जाता है। वो मार्ग नवाबी रास्ता भले ही ना हो, परंतु मार्ग है। उस मार्ग पर व्यक्ति सदैव से चलता आ रहा है। सामान्य जनजीवन के इस मार्ग पर अकेली नवाब की बेटी का लंबा भ्रमण वृत्तांत शायद सुनने में अच्छा ना लगे, परंतु हो तो भी उन सभी बातों को कहने का जोश मुझ में नहीं है। संक्षेप में, अनेक दुख, पीड़ा, विपत्ति और अपमान सहने पड़े हैं, फिर भी जीवन असहनीय नहीं हुआ। आतिशबाजी की भांति जितना जला उतनी ही स्वतंत्र गति प्राप्त हुई। जब तक तेज गति से चल रही थी, जलने का ज्ञान नहीं था। आज एकाएक वो परम दुख और चरम सुख की आलोक शिखा बुझ जाने पर इस मार्ग की धूल के ऊपर चढ़ की भांति गिर पड़ी हूँ। आज मेरी यात्रा खत्म हो गई, यहीं मेरी कहानी भी खत्म होती है। इतना कहकर नवाब की बेटी चुप हो गई। मैंने मन ही मन सिर हिलाया। कहानी का समापन किसी तरह भी नहीं हो सकता। थोड़ी देर तक बिना कुछ बोले मैं फिर टूटी फूटी हिंदी में बोला, क्षमा कीजिए, बात की बातें थोड़ी विस्तार पूर्वक बताएं तो गुलाम के दिल की व्याकुलता कुछ कम हो सकती है। नवाब की बेटी हंस पड़ी। मैं समझ गया कि मेरी टूटी फूटी हिंदी का प्रभाव है। यदि मैं शुद्ध हिंदी में बात कर पाता तो मेरे समक्ष उनकी शर्म न टूटती, परंतु मैं उनकी मातृभाषा बहुत कम जानता हूँ। यही हम दोनों के मध्य एक बड़ी दूरी है, यही एक पर्दा है। उन्होंने फिर कहना शुरू किया, केशरलाल की जानकारी मुझे अक्सर मिलती रहती थी, परंतु किसी तरह भी उनसे मुलाकात संभव नहीं हुई। वे तात्या टोपे के दल के साथ मिलकर उस क्रांति से ढके हुए आसमान के नीचे कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी ईशान में, कभी नैऋत्य में वज्रपात की भांति पल भर के लिए टूटते फिर गायब हो जाते थे। उस वक्त मैं संन्यासिनी बनकर काशी से शिवानंद स्वामी को पिता संबोधित करके उनके समीप संस्कृत शास्त्र पढ़ रही थी। भारतवर्ष के संबंधित सभी समाचार उनके चरणों में आकर इकट्ठे होते थे। मैं भक्तिपूर्वक शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करती रही और चिंतित अवस्था में युद्ध के समाचार इकट्ठे करती थी। धीरे धीरे ब्रिटिश राज ने हिंदुस्तान के विद्रोह की अग्नि को पांवों तले कुचल दिया। उस समय अचानक केशरलाल के समाचार मिलने बंद हो गए। भीषण प्रलय के आलोक की खून की किरणों में भारतवर्ष के सुदूर प्रांतों में जो वीर मूर्तियां पल पल दिखाई दे रही थीं, एकाएक वे सब अंधकार में गुम हो गईं। तब मुझसे और सहन नहीं हुआ। गुरु का आश्रम त्याग कर भैरवी की वेशभूषा में फिर बाहर निकल गई। एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, मठों में, मंदिरों में भ्रमण करती रही। कहीं केशरलाल की कोई सूचना नहीं मिली। एक दो लोगों ने जो उसको नाम से जानते थे बोले, उसे या तो लड़ाई में या राजा की अनुमति से मृत्यु प्राप्त हुई है। मेरी अंतरात्मा ने कहा, कभी नहीं, केशरलाल का देहावसान नहीं हो सकता। वो ब्राह्मण, वो दुस्सह ज्वलंत अग्नि कभी नहीं बुझ सकती। मेरी आत्मा होती ग्रहण करने के लिए वो अब भी किसी सुनसान यज्ञ की वेदी पर ऊर्ध्व शिखा के रूप में चल रही है। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान और तपस्या द्वारा शूद्र ब्राह्मण बना है। मुसलमान ब्राह्मण बन सकता है या नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। इसका एकमात्र कारण ये है कि प्राचीन काल में मुसलमान थे ही नहीं। मैं जानती थी कि केशरलाल के साथ मेरे मिलन में बहुत देर है, क्योंकि उससे पहले मुझे ब्राह्मण बनना होगा। एक एक करके 30 साल व्यतीत हो गए। मैं अपनी आत्मा से, बाहर से, रहन सहन से, मन वचन कर्म से ब्राह्मण बन गई। मेरे उस ब्राह्मण पितामही का खून निर्मलता या पवित्रता के साथ मेरे पूरे शरीर में बहने लगा। मैंने मन ही मन अपने यौवन आरंभ के पहले पुरोहित, अपने यौवन समाप्ति के आखिरी पुरोहित, मेरे तीनों लोगों के एकमात्र पुरोहित के चरणों में स्वयं को संपूर्ण रूप में बिना किसी संकोच से प्रतिष्ठित कर एक अपूर्व दीप्ति प्राप्त की। लड़ाई और क्रांति के बीच केशरलाल की वीरता की अनेक गाथाएं मैंने सुनी, किंतु उन बातों ने हृदय पर कोई विशेष छाप नहीं छोड़ी। बस वही तस्वीर कि शांत चांदनी रात में निस्तब्ध यमुना की लहर में एक छोटी सी नाव पर सवार अकेले केशरलाल चले जा रहे हैं, मेरे हृदय पटल पर अंकित हो चुकी थी। मैं प्रत्येक क्षण बस यही देखा करती कि ब्राह्मण सुनसान स्रोत पर सवार दिन रात किसी अनजान महारहस्य की तरफ भागा चला जा रहा है। उसका कोई साथी नहीं, सेवक नहीं, उसे किसी की जरूरत नहीं। वो निर्मल आत्मनिमग्न पुरुष स्वयं अपने में पूर्ण है। आसमान के चांद तारे उसे चुपचाप देख रहे हैं। इसी बीच सूचना मिली कि केशरलाल ने राजदंड से पलायन कर नेपाल में शरण ली है। मैं नेपाल गई। वहां कई दिनों तक रहने के पश्चात सूचना मिली कि काफी दिन हुए केशरलाल नेपाल छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। उसके पश्चात से मैं पहाड़ों में ही भटक रही हूँ। ये हिंदुओं का देश नहीं है, भूटिया और लपेचा लोग म्लेच्छ हैं। उनके जीवन और व्यवहार में कोई सदाचार नहीं है। इनके इष्ट देव और पूजा अर्चना की विधि सब कुछ अलग है। कई दिनों की पूजा अर्चना द्वारा मैंने जो विशुद्ध शुचिता प्राप्त की थी, मुझे डर महसूस होने लगा कि कहीं उसमें इन लोगों का जरा सा भी प्रभाव न पड़ जाए। मैंने हर संभव कोशिश कर अपने को हर प्रकार के मलिन संस्पर्श से बचा कर रखा। मैं जानती थी कि मेरी नाव किनारे आ लगी है, मेरे जीवन का चरम तीर्थ समीप ही है। उसके पश्चात और क्या कहूँ, बाकी बातें बहुत कम हैं। दीपक जब बुझता है तो हवा के एक ही झोंके से बुझ जाता है। इस बात का और लंबा वर्णन क्या करूँ। 38 वर्ष के बाद इस दार्जिलिंग में आकर आज प्रातःकाल मैंने केशरलाल को देखा। बोलने वाली को मैंने यहाँ चुप होते देखकर उत्सुकतावश पूछा, क्या देखा? नवाब की बेटी बोली, देखा बूढ़ा केशरलाल भूटिया बस्ती में भूटिया पत्नी तथा उसके गर्भजात पौत्र पौत्रियों को लेकर मैले वस्त्र पहने मैले बरामदे में भुट्टों के दाने निकाल रहा था। कहानी समाप्त हुई। मैंने सोचा ढांढस के कुछ शब्द कहने चाहिए। मैं बोला, 38 वर्ष तक लगातार जिस प्राणों के डर से दिन रात विजातियों के साथ रहना पड़ा हो, वो भला अपने आचार की रक्षा कैसे कर सकता है? नवाब की बेटी बोली, क्या मैं ये नहीं समझती? परंतु मैं इतने दिन किस मोह से घूम रही थी? जिस ब्राह्मणत्व ने मेरे किशोर हृदय का हरण किया था, क्या मैं जानती थी कि वो केवल अभ्यास और संस्कार मात्र था? मैं तो समझती थी वो धर्म अनादि और अनंत था। यदि ऐसा ना होता तो 16 साल की किशोरावस्था में पिता के घर से पहली बार बाहर निकलकर उस चांदनी रात में अपने विकसित पुष्पित भक्ति के वेग से कंपित तन मन और प्राणों के समर्पण के बदले ब्राह्मण के दाएं हाथ से जो दूसरा अपमान मिला था, उसे गुरु के हाथ की दीक्षा समझकर बिना कुछ बोले सिर झुकाकर दोगुने भक्ति भाव से क्यों मैंने सिर माथे लगाया? हाय ब्राह्मण, तुमने तो अपने एक अभ्यास के बदले दूसरा अभ्यास प्राप्त कर लिया। मुझे अपने एक यौवन एक जीवन के बदले दूसरा जीवन यौवन फिर कहाँ मिलेगा? ये कहकर रमणी उठी और बोली, प्रणाम बाबूजी। पल भर में ही मानो संशोधन करके कहा, सलाम बाबू साहब। इस मुस्लिम अभिवादन द्वारा उसने मानो जीर्ण नींव वाले धराशायी भग्न ब्राह्मणत्व से आखिरी विदाई ली। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो उस हिमाद्रि शिखर के घने कोहरे में बादलों की तरह खो गई। मैं क्षण भर के लिए आंखें मूंद कर पूरे घटनाक्रम को मस्तिष्क पर चित्रित देखने लगा। आंखें खोलकर देखा, मेघ एकाएक फट गए थे और तेज धूप से निर्मल आकाश चमक रहा था। हाथ से चलने वाले रिक्शों पर अंग्रेज स्त्रियां और घोड़े पर सवार अंग्रेज पुरुष सैर सपाटे के लिए निकल पड़े थे। बीच बीच में एक दो बंगालियों के गुलूबंद से ढके चेहरे से मेरे प्रति कौतुकपूर्ण कटाक्ष आ रहे थे। मैं शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। जो कुछ भी देखा सुना था वो अब सही नहीं लग रहा था। लगता था मैंने कोई कल्पना बुनी थी। वो मुसलमान ब्राह्मणी, वो वीर ब्राह्मण और यमुना के किनारे का वो किला, सब कुछ मेरी कल्पना मात्र थी जो कुछ क्षणों के लिए मेरे सामने चित्रित हो उठी थी। वाचक स्वर संज्ञा टंडन, प्रस्तुति
अर्पा रेडियो।